ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा।
कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता
और मैं अमित,
हमारा प्यार भरा नमस्कार।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत।
भजन संहिता अध्याय 95, गीतकार अज्ञात, परमेश्वर की आराधना करने का आह्वान।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है
वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया।
प्रिय रेडियो मित्रों, परमेश्वर मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्र, ये शब्द संपन्नता, सफलता इतने गलत समझे गए हैं। हम इन्हें निकट से देखना चाहते हैं। बाइबल इनके बारे में क्या कहती है? कुछ नौ के लिए संपन्नता शब्द कुछ संदेहशील प्रतीत होता है। संसार के अनुभव से प्रभावित होने के द्वारा हमने अपने प्रभाव को पाया है और अक्सर हम उसे संसार के समांतर निकालते हैं। हम एक विलासिता तथा स्वार्थपूर्ण जीवन, सफलता का एक जीवन, दूसरे का शोषण करके कुछ लोगों की विरासत या एक धर्म का बहाना बनाकर सांसारिक जीवन, ऐश्वर्य का जीवन, यहां तक कि जल्दी धनी बन जाने की प्रवृत्ति इच्छा की कल्पना करते। इसका मतलब है सीधे शब्दों में पाप से कमाया हुआ धन, दूसरों को शोषण करके कमाया हुआ धन, किसी और तरीके से प्राप्त आशीष। आराम से सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने मतलब के लिए एक आत्म केंद्रित जीवन को जिए, एक ऐसा जीवन जिसका वर्णन याकूब 4:2-3 में किया गया है, तुम लालसा रखते हो तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आप अपनी वास्तवों की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर यहां दो टिप्पणियां करता है, स्वार्थपूर्ण जीवन जीने के लिए मांगना, गलत दृष्टिकोण से मांगना, दो ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले उत्तर नहीं पाएंगे। हम देखते हैं कि जबकि तबकि परमेश्वर हमारे उद्देश्यों को देखता है, जबकि हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे पास गलत उद्देश्य है तो ये प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। फिर भी बाइबल सफलता संपन्नता के बारे में बातचीत करती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का इससे क्या तात्पर्य है। जब मनुष्य जाति पाप में गिर गई तो भय और हार उसके जीवन का अनुभव तथा विचार बन गया। ये सब बातें हमारे जीवन को लगातार प्रभावित करती रहती है, यहां तक कि नया जन्म पाने के बाद भी, विशेषकर यदि हमने परमेश्वर के वचन से सही शिक्षा नहीं पाई है। बहुत से मसीही अविश्वास तथा असफलता के घाव के निशान के साथ जोड़ दिए गए हैं, वे फिर से कुछ भी अच्छा होने की आशा छोड़ देते हैं कि वे सफलतापूर्वक विकसित संपन्न हो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके बच्चे सब बातों में असफल हो जाए या हार में जीवन बिताए। उसने अपने परिवार के लिए योजना बनाई है कि वे विजय उल्लास में जिए। यही वो कारण है कि यीशु मरा, शैतान को हराया। शैतान बहुत नाराज होता है जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है। वो नहीं चाहता कि आप आनंदित, खुश, चंगे, आजाद, आशीषित हो। वो ये देखना चाहता है कि आप बंधे हुए, असहाय हो, परमेश्वर की आशीष में जीने से क्या हो, वंचित हो। आपके पास उसके आने का एक ही कारण है, वो यह है कि वो चोरी करे, आपके जीवन की हत्या करे, उसे नष्ट करे। लेकिन यीशु आपको भरपूरी का जीवन देने आया। यूहन्ना 10:10। अत्याचार, निराशा, हार, गरीबी, पाप, साप, इन सब का घर संसार में है। लेकिन यीशु ने कहा, धैर्य रखो, मैंने संसार को क्या किया है, जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। पहला यूहन्ना 5:4 कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। हम और आप परमेश्वर से जन्मे हैं, उसने हमारे अंदर संसार पर विजय पाने की योग्यता अपनी आत्मा द्वारा रखी गई है। हम अपने प्रत्येक आक्रमण पर विजय के साथ भी जी सकते हैं। यही है कि सफलता और संपन्नता में जीना। परमेश्वर का वचन संपन्न होता गया, हम ऐसे जीवन की बात नहीं कर रहे हैं जो बिना समस्याओं का जीवन हो, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जो लगातार आक्रमण के अंतर्गत रहता है। शैतान क्रोधित होता है जब आपने वास्तव में ये फैसला ले लिया है कि आप उसके वचनानुसार अनुसरण करें। वो आपको रोकने के लिए भरपूर प्रयत्न करता है, लेकिन आप अपने परमेश्वर के साथ सफल होंगे। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है, रोमियो 8:31। क्योंकि बहुत से लोग सफलता के सबसे नाराज होते हैं। मैंने कई बार प्रभु से पूछा, संपन्नता सफलता की परिभाषा उसके अनुसार क्या थी, तो मैंने इसका उत्तर पाया, एक पुरुष और स्त्री तब संपन्न होते हैं जब जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है और प्रतिज्ञा विश्वासी के लिए ही है, वो उसके जीवन की वास्तविकता बन जाती है। यही है कि संपन्न और सफल होना, ये वचन है जिसे संपन्न होना है। ऐसा ही जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है मेरे पास खाली नहीं लौटेगा, वरन जिस उद्देश्य से मैंने उसको देखा है उसको पूरा करेगा, जिसके लिए मैंने उसको भेजा था वो उसको क्या करेगा, सफल करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको क्या करे, आशीष दे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पंखों के नीचे रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन सुसमाचार फैले। जब ये होगा तो सामर्थ प्रकट होगी, लोग उद्धार आशीष पाएंगे, पुनर्स्थापित होंगे, वचन संपन्न होगा, तब लोग जो उसके द्वारा स्पर्श किए जाएंगे शिष्यों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। परमेश्वर ने सदैव बढ़ोतरी, प्रगति, सफलता, संपन्नता के शब्दों में सोचा है। ये बात उसके वचन में भी लागू होती है कि वो इसे रास्ते में कहीं रुकने के लिए नहीं भेजता है, लेकिन आकाश से हिम गिरता है, वर्षा की बूंदे टपकती है, वो लौट कर आकाश को नहीं जाती, वरन पृथ्वी पर भूमि को सींचती है, वे अन्न को उपजाती है, बोने वाले को बीज, खाने वाले को भोजन प्राप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन को चिन्ह और आश्चर्य कर्मों से निश्चित करता है और चाहता है कि अधिक से अधिक लोग जितनी आशीष से पा सके वे उसे पाकर अलौकिक हो सके। परमेश्वर दयालु है, उन लोगों को अच्छी चीजें देने में कंजूसी नहीं करता, कुकराहट के साथ अच्छी वस्तुएं रोक कर रखता नहीं है, जैसा कुछ लोग शिक्षा देते हैं जब वे परिशास्त्र को तोड़ मड़ोड़ कर करते हैं। परमेश्वर को वैसा प्रस्तुत करते हैं जैसा वो नहीं है। विश्व 1:3 में हम देखते हैं उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। रोमियो 8:32 में कहता है कि वो जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा बल्कि हमारे लिए दे दिया, तो क्यों कर हमें उसके साथ सब चीजें उदाता पूर्वक ना देगा। परमेश्वर हमें देने से अपने आप को रोकता नहीं है, वो हमें देता है। परमेश्वर चाहता कि हम उसके सेवक बने, एक सेवक होने के नाते हम संपन्न बने। भजन संहिता 35:27 में लिखा है, वे निरंतर ये कहते रहे कि प्रभु महान है, वो अपने सेवक के कल्याण से सुखी होता है। वो आपसे चाहता है कि आप ये जाने कि आप उसकी इच्छा को पूरा करते हैं तो आप सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी योजनाओं को जो उसके वचन में अभिव्यक्त है, जो पहले से ही उद्घोषित है, खाली हाथ नहीं लौटेगा, बिना फल के वापस नहीं आएगा। अगर आप उसके वचन पर विश्वास करें और उसके वचन का अनुसरण करें तो आप बढ़ेंगे, आपका गुणात्मक विकास होगा। दूसरे शब्दों में ये फैलेगा, आशीष आपके पास आएगी, उन तक भी सुसमाचार के साथ पहुंचाए गए हैं। व्यवस्था ग्रंथ सब तेरे मुख से कभी ना अलग हो, ये लिखा है यशहू 1:8 में। तो दिन रात क्या करना, व्यवस्था को पालन करना, व्यवस्था को पढ़ना, अपने हृदय में रखना, ताकि तू उसमें लिखी हुई सब बातों का पालन कर सके, उनके अनुसार कार्य कर सके, तब तू अपने मार्ग पर उन्नति करेगा, तो अपने कार्य में सफल होगा। परमेश्वर यहां क्या प्रतिज्ञा करता है, तब तू संपन्न और सफल होगा। कब तक संपन्न और सफल होंगे, जब आप उसके वचन में बने रहेंगे, विश्वास करते हैं, अनुसरण करते हैं, क्योंकि वचन आप में फैल रहा है। ये कोई आत्म केंद्रित पलायनवादी विचार इसी बलशाही साहसी तथा सुंदरता के लिए नहीं है, लेकिन वचन के बारे में है। जो अपने हृदय में उसको अपनाते हैं, वो उसके जीवन में रूपांतर आशीष उन्नति लाता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में के सिर्फ एक क्षेत्र में ही लागू नहीं होती। बहुत से धर्म ज्ञानी सुसमाचार को इतना धूमिल बना देते हैं कि कोई भी इसे अपने वास्तविक अर्थ में ग्रहण करने का साहस नहीं करता। लेकिन सुसमाचार ठोस शब्दों में बातचीत करता है। परमेश्वर की आशीष से यहां अभी और अनंत काल के लिए भी है, फिर भी चंगाई छुटकारा सिर्फ आज के लिए है। ये स्वर्ग में इनकी आवश्यकता नहीं होगी, उनकी आवश्यकता कहाँ है, इस पृथ्वी पर है। भजन संहिता 1:3 में लिखा है, यदि आप अनंत प्रभु की व्यवस्था में हैं, तो आप उस वृक्ष के समान हैं जो नहर के तट पर रोपा गया, जो अपनी रुचि पर क्या करता है, फलता है, इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ धार्मिक मनुष्य करता है वो सफल होता है, जो कुछ वो करता है वो सफल होता है। ध्यान दे, ये नहीं कहा क्या कि सिर्फ जीवन के एक क्षेत्र में सफल होता है, जैसे नया जन्म, बाकी सब क्षेत्रों का उतार चढ़ाव में गुजरते हैं, दूसरों के समान बुरा होता है, क्योंकि सभी लोग एक समान स्थिति का सामना करते हैं। नहीं, हम सभी एक जैसी परिस्थितियां का सामना नहीं करते हैं। ये संसार पाप के साप के अंतर्गत है, परंतु जब नया जन्म पा लेते हैं, जब आप वचन पर सुनने चलने वाले बन जाते हैं, तो आपका जीवन आशीषित होता है। आप वाचा की आशीष के अंतर्गत गुजरते हैं। ये इस तरह नहीं कि आप बहुत चलाक है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आपने यीशु को क्या किया है, ग्रहण किया है, जो उस वाचा का बयान तथा क्या है, गारंटी है। यीशु आशीषित है, आप उसमें हैं। उसने मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग की हर प्रकार की आत्मिक आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए। यीशु 1:3 हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, भजन संहिता 1:3 धार्मिक व्यक्ति के बारे में कहता है, जो कुछ वो करता है यानी का है सफल होता है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन की प्रत्येक शाखाएं क्या होगी, खिलेगी, उसमें फूल आएंगे, आपकी जिंदगी हरी भरी होगी, आपके जीवन एक नया जीवन आएगा। कैसा जीवन, बहुत आयत का जीवन। यूहन्ना 10:10 परमेश्वर से जीवन को ढेरना बढ़ता हुआ विकसित, महिमा से महिमा और बढ़ता हुआ। एक बार हम देखते हैं कि मनुष्य को समझाना बहुत कठिन काम है, तो मनुष्य आज समझ नहीं पाते, वचन को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते, उनका दिमाग कहीं और रहता है, वो कुछ और सोचते हैं। हम देखते हैं शैतान जो हमें उस बीज को उठाता है, हमारे दिमाग से उठा के चला जाता है, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, हमारा दिमाग क्या होता है, खाली हो जाता है। इसलिए हमें वचन की अधीनता के नीचे बैठे, जब परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, तो हम शर्म लज्जा महसूस करते हैं, और जो आशीष हमने पाई है उसके लिए हम बहाना बनाते हैं। परमेश्वर को आदर नहीं देते, परमेश्वर को महिमा देता है जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, जो कुछ उसके पास हमारे लिए है उसको क्या करते, ग्रहण करते। बहुत सारे मसीह आज अपने बेशकीमती घरों में रह रहे हैं, आरामदार फर्नीचर उनके आसपास घिरे हुए हैं, उनके घर के बाहर आलिशान कार गर्व से खड़ी है, जबकि वे स्वयं कैसी स्थिति में है, दयनीय स्थिति में है, यीशु को प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि यदि वो करते हैं तो वचन पर चलते, यूहन्ना 14:21 उन्हें उसके बारे में गवाही देते और बीमारियों को दान देते, दूसरों के जीवन में शामिल होते। भौतिक संपत्तियां बहुत कम महत्वपूर्ण है, यीशु अव्वल है, लेकिन ये नहीं चाहते। जब ये आशीष दे तो हम शर्म से लाल हो जाए। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि अपने बच्चों के लिए की है। ये एक भौतिक संसार है जिसमें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है, यीशु ने कहा, परंतु पहले उसकी राज धार्मिकता की खोज करो तुम्हें सब वस्तुएं क्या होगी, मिल जाएगी। मत्ती 6:33 ये सब बातें क्या है, यीशु भोजन वस्त्र के बारे में बात कर रहे। 23 में हम देखते तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है उन्हें तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे क्या आवश्यकता है। परमेश्वर आपसे कुछ भी रोक कर रखता नहीं है, इसके विपरीत वो आपको आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आशीष देना चाहता है। वो चाहता है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छी तरह से चले। 3:2 कहता है, मेरी हार्दिक कामना कि सब तरह से आपका कल्याण हो, आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ रहे। परमेश्वर चाहता है कि सब बातें आपके साथ अच्छी तरह रहे, आप संपन्न हो और परमेश्वर की आशीष आपके अंदर हो, आप प्रगति करें, सफलता पाए। परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छी प्रगति करें, सफल हो, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का राज और आगे बढ़े। विचार करें कि यीशु ने कितने दृष्टांत कहे हैं जो बताए अच्छी प्रगति के बारे में बताता। उदाहरण स्वरूप उसने टोले के बारे में बताया जिसे बढ़ाना था, उसने वचन का दृष्टांत लिया, बताया कि उसे बोया जाकर 30 से लेकर 100 गुना फल लाया। दूसरा दृष्टांत जो तस्वीर पेश करता है कि वो मनुष्य का मछुआरा है। एक मछुआरा क्या चाहता कि एक पकड़। परमेश्वर अपने राज के परिणाम और वृद्धि चाहता है। परमेश्वर चाहता है इस स्वर्ग के राज के लिए बहुत से लोग उसके पास आए और उद्धार पाए। योहन्ना 15 में यीशु कहते कि वो उद्धार करता है, हम क्या है, शाखाएं हैं। उसके बाद वो कहता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सत्य है, अक्सर ये बताया गया है। लेकिन क्या ये अजीब बात नहीं है, केवल पद का एक ही हिस्सा बताया जाता। हाँ, हम सहमत हैं, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इस बात पर आधारित हो जाते हैं कि कितना कम हम कर सकते हैं, कितना कम परिणाम हम देखते हैं। हमें इसके संपूर्ण संदर्भ में पढ़ना है। कई बार हम कट्टरपंथी लोग पद को उसके संदर्भ से बाहर लेने की दोषी होते हैं, लेकिन मैं इसके विपरीत सत्य को व्यवस्थित करता हूँ। ये धार्मिक परंपरावादी है जो अपने पदों को अलग अलग थलग कर देते हैं। यीशु ने पद 5 में कहा, यदि कोई मुझ में बना रहे, मेरी बातें बनी रहे, बहुत फल लाएगा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम नकारात्मक बात में जल्दीबाजी कर जाते हैं। यीशु जो जीवन यहाँ कह रहा है वो सकारात्मक है, मुझ में रहकर तुम बहुत फल लाओगे। अधिक फल क्या है, संपन्नता और सफलता। किसमें, यीशु में, यीशु के अधीन में रहकर, यीशु को सब कुछ देकर। परमेश्वर कितना चिंतित है इस बात पर बल देने के लिए आप अधिक फल लाए। यीशु उसी अध्याय में इसको कई बार दोहराता, पद 16 में वो कहता है, वो यहाँ तक आगे बढ़कर कहता है, इससे मेरे पिता की महिमा होगी कि तुम अधिक फल लाओगे, तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। यीशु के कहने का क्या अर्थ है, उसके कहने का अर्थ है कि जब आपके साथ सब कुछ ठीक चलता है तो उससे परमेश्वर की महिमा मिलती है। जब आप में फल आता है, फल जो यीशु के जीवन से आता है, जो बहुतायत का जीवन है, जो आपके व्यक्तिगत के प्रत्येक कोशिकाओं मांसपेशियों में पहुंच जाता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप में उसका वचन, उसकी प्रतिज्ञाएं, आशीष बढ़े, आप आगे बढ़े, आप विश्वास करें। ये उसकी इच्छा कि उस योजना आपके जीवन में वास्तविकता बन जाए। अतः अपने सिर को गर्व से ऊंचा कीजिए, उठाइए, देखें आप आशीषित हैं, देखें कि यीशु में आप एक आशीष के स्रोत हैं। चाहे जहां कहीं भी आप जाते हैं, फल लाते हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं उसमें सफल होते हैं। आप अपनी असफलताओं को किसी विषय पर अंतिम फैसले के रूप में स्वीकार करें। सभी गलती करते हैं, सभी लोग गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं गलत काम उठा लेते हैं, लेकिन वही फंसी ना रहे, सिर को क्या करें, ऊंचा उठाएं। उसके बाद यीशु की ओर देखें, उसको ये दिखाने की आज्ञा दे, बताए कि आपको कैसा देखना है, क्योंकि आप देखते हैं कि उसके पास आपके लिए कितनी अद्भुत योजना है। जो भय असफलता हारी ही प्रवृत्ति अपनी पकड़ ढीली कर दे, आप देखेंगे कि वास्तव में परमेश्वर द्वारा आप क्या होंगे, आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पास आते खुदावन, हम कमजोर है प्रभु, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं खुदावन कि हम तेरे वचन के अनुसार चल सके और तेरे इशारों पर चल सके। शैतान हमें हराना चाहता है, हमें तोड़ना चाहता है खुदावन। हमारे परिवार में आइए, हमारे घरों पे आइए प्रभु, सुनने वाले श्रोताओं के साथ होइए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अगर आप मुझे फोन करें तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके पास कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, जीत परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर, मेरा नंबर लिखे। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा आईडी है morris@gmail.com, morris@gmail.com। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे।
यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है,
कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया।
पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया।
और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता
और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए,
प्रभु आपको आशीष दे।